नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवली निगम। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा, भारत द्वारा दिया गया विशेष आर्थिक पैकेज मॉरिशस की जरूरतों को पूरा करेगा। भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौतों को जल्द लागू करने के लिए प्रयास तेज करने का निर्णय लिया। इसराइल ने गाजा शहर पर बड़े स्तर पर जमीनी हमला किया। प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक रॉबर्ट रेडफोर्ड का अमेरिका में निधन। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत की पड़ोसी प्रथम नीति, महासागर विजन और वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता में मॉरिशस का विशेष स्थान है। आज राष्ट्रपति भवन में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी और सहयोग हर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि हाल ही में संबंधों के उन्नत रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित होने से परिलक्षित होती है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत मॉरिशस सरकार की विकासात्मक प्राथमिकताओं का समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा कि नया विशेष आर्थिक पैकेज मॉरिशस सरकार और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री राम गुलाम के व्यापक नेतृत्व अनुभव से भारत मॉरिशस के दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंध आने वाले समय में और मजबूत होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री राम गुलाम के 8 दिन की भारत यात्रा का आज समापन हो गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री राम गुलाम ने वाराणसी में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की और भारत और मॉरिशस के बीच रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। उन्होंने आपसी हितों के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने के लिए नए अवसरों की भी पहचान की, जो दोनों देशों, उनके लोगों और क्षेत्र के लिए साझा समृद्धि को बढ़ावा देंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों ने विज्ञान, समुद्र विज्ञान, बिजली, जल विज्ञान, सामुदायिक विकास, क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। मोदी ने मॉरिशस की जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की। दिल्ली में श्री राम गुलाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी और सदैव अटल में अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते पर शीघ्र निष्कर्ष निकालने के प्रयास तेज करने का निर्णय लिया है। समझौते के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल आज भारत पहुंचा। उन्होंने नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव के नेतृत्व में चर्चा की। वार्ता में व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन से टेलीफोन पर बात की। दोनों देशों ने हरित रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि यूक्रेन संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करना दोनों देशों के पारस्परिक हित में है। शारजहां में इंक्लूजन इंटरनेशनल के 18वें विश्व कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता अधिकार प्रमुखों ने भारत की विधायी प्रगति की सराहना की और साथ ही दिव्यांगजनों को प्रभावित करने वाली जलवायु संवेदनशीलता पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट।
3 दिन के सम्मेलन में 74 देशों के 500 से अधिक प्रतिभागी वैश्विक दिव्यांगता समावेशन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एकत्रित हुए। इंक्लूजन इंटरनेशनल यूनाइटेड किंगडम के कार्यकारी निदेशक जेमी कुक ने सम्मेलन में भारत की हालिया विधायी प्रगति के महत्व पर बल दिया। श्री कुक ने कहा कि भारत में रोजगार और अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियों तक दिव्यांगजनों की पहुंच में विधायी प्रगति हुई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अरब राष्ट्र सद्भावना दूत माइकल हद्दाद ने सम्मेलन के दौरान अरब राष्ट्र क्षेत्र और जलवायु कार्रवाई में भारत के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। विश्व दर्पण के लिए सरफिरोजी।
अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के बीच दीर्घकालिक अंतरिक्ष साझेदारी पर बल दिया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के दोनों देशों के बीच सहयोग के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक बताया। वाशिंगटन में भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग कार्यक्रम में श्री क्वात्रा ने कहा कि चंद्रयान मिशन, आर्टिमिस समझौता और निसार प्रक्षेपण सहित कई मिशनों और कार्यक्रमों के माध्यम से यह सहयोग और बढ़ रहा है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। इसराइल ने आज गाजा शहर पर जबरदस्त जमीनी हमला किया। फलस्तीन ने इसे 2 साल के युद्ध में अब तक की सबसे भीषण बमबारी बताया है। इसराइल ने कहा है कि उसने आतंकवादी ढांचे पर कड़ा प्रहार किया है। इसराइल के सैनिक बंधकों की रिहाई और हमास की हार सुनिश्चित करने के लिए बहादुरी से लड़ रहे हैं। सैनिक मुख्य शहर में और अंदर तक जा रहे हैं। आने वाले दिनों में सैनिकों की संख्या बढ़ेगी और गाजा में 3,000 हमास लड़ाकों का सामना करेगी। संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग ने इसराइल पर गाजा में फलस्तीन के लोगों का नरसंहार करने का आरोप लगाया है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ये निष्कर्ष इसराइल के नेताओं के बयानों और उसके सुरक्षा बलों के आचरण पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत नरसंहार के रूप में परिभाषित 5 में से 4 घटनाएं वर्ष 2023 में संघर्ष शुरू होने के बाद हुई हैं। उधर इसराइल ने रिपोर्ट को विकृत और झूठा बताते हुए खारिज कर दिया है। इसराइल की सेना ने गाजा में एक सैन्य अभियान शुरू किया। गाजा के अनुसार इसराइली हमलों में अब तक लगभग 64,905 लोग मारे गए हैं। बेलारूस के नेता अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि रूस और बेलारूस संयुक्त युद्धाभ्यास के अंतर्गत रूस के सामरिक परमाणु हथियारों के प्रक्षेपण का पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास में रूस की ऑर्शेनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। 5 दिन का युद्धाभ्यास का समापन हो गया है। युद्धाभ्यास रूस के नेतृत्व में किया गया। नेपाल में युवाओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान ललितपुर में संघीय मंत्रियों के आवास और प्रांतीय प्रमुख तथा मुख्यमंत्री आवास में हुए नुकसान का प्रारंभिक विवरण जुटाया जा रहा है। आंदोलन के दौरान भैंसेपाची में संघीय मंत्रियों, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा के उपाध्यक्ष के लिए निर्मित कुल 27 भवनों को आग लगा दी गई और तोड़फोड़ की गई। इसी तरह सभी प्रांतों के प्रांत प्रमुखों और मुख्यमंत्रियों के लिए बनाए गए संपर्क कार्यालय भी क्षतिग्रस्त हो गए। वर्तमान में नेपाल सेना ने भैंसेपाची स्थित संघीय मंत्रियों के आवासों और प्रांतीय संपर्क कार्यालय को सुरक्षा प्रदान की है। संघीय सचिवालय के अनुसार क्षति आकलन रिपोर्ट मिलने तक रखरखाव और अन्य कार्य तब तक शुरू नहीं किए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने जापान के ऑटोमोबाइल उत्पादों पर घटाया गया 15% शुल्क आज से लागू करने की घोषणा की है। इस महीने की शुरुआत में जापान के साथ समझौता लागू करने के बारे में कार्यकारी आदेश पर श्री ट्रंप के हस्ताक्षर करने के बाद यह शुल्क लगाया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ने जापान के ऑटोमोबाइल और कल पुर्जों पर शुल्क मौजूदा 27.5% से घटाकर 15% करने पर सहमति व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का 69वां सम्मेलन वियना में हो रहा है। ये सम्मेलन परमाणु ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता पर केंद्रित है। हॉलीवुड अभिनेता निर्देशक रॉबर्ट रेडफोर्ड का 89 वर्ष की आयु में आज अमरीका में निधन हो गया। अभिनेता निर्देशक निर्माता रेडफोर्ड को बुच कैसिडी एंड द सन डांस किड, द स्टिंग और ऑल द प्रेजिडेंट्स मेन जैसी श्रेष्ठ फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ICC वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई हैं। रविवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच में अर्धशतकीय पारी खेलकर उन्होंने रैंकिंग में इंग्लैंड की कप्तान नेट साइवर ब्रंड को पीछे छोड़ दिया। उधर चीन में पीवी सिंधु चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पहले दौर में सिंधु ने डेनमार्क की जूली डवाल को सीधे गेम में पराजित किया। इस बीच टोक्यो में सर्वेश कुशारे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ऊंची कूद स्पर्धा के फाइनल में छठे स्थान पर रहे। उन्होंने 2.28 मीटर की कूद लगाकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा, भारत द्वारा दिया गया विशेष आर्थिक पैकेज मॉरिशस की जरूरतों को पूरा करेगा। भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते को जल्द लागू करने के लिए प्रयास तेज करने का निर्णय लिया। इसराइल ने गाजा शहर पर बड़े स्तर पर जमीनी हमला किया। प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक रॉबर्ट रेडफोर्ड का अमेरिका में निधन। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के उपकप्तान स्मृति मंधाना ने ICC वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।